Hare Krishna. Dada Chandana. Hindi mein padho kya? Hindi mein padho kya? Hare Krishna. Bhaktanga swagat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. जैसे आप जानते हो एक क्लास है दो भाग देंगे मैं थोड़ी देर के लिए बोलूंगा कि मैं पूजा करना अभिषेक से पहले और फिर प्रपोजल महाराज देंगे इस प्रवचन ठीक है श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 8 टेक्स्ट 12 श्री गागवाच आयाम हे रोहिणी Putro Ramayam Sudo Gurne Akhyasyate Rama Iti Bradikya Bahalam Vedhu Yadunam Aprathar Bhavar Sankarsham Vishan Yapi Shigarga Vacha Ayamiroini Putro Ramayan Surdugane Akhyasyate Rama iti Vadekyar Param Vidhu Yadunam Apsar Bhava Sankarsanam Mushyantyapi Ayami Rohini Putro Ramayan Surdogane Akhyasyate Rama iti Vadekyar Param Vidhu Yadunam Apsar Bhava Sankarsanam Mushyantyapi
Yadu Vanska, Aprapra, Bhava, शांति
शांति
आप सभी प्रार्थना
काफी
काफी
तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोहरस्तम सावधामेन भूतले स्वयं रूप कदामयम दादि स्वापन निगम वंदे हम श्री गुरु श्री पद कमल श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपम सगरायतम सागना रघुनाथनम तम सुदेवम सद्वैतम सवधूतम परिजना सहितम श्री राधा कृष्णा पदान सहागना ललिता श्री विशाखान्वितम हे कृष्णा करुणा सिंधु सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानु सूति देवी प्रणमामि हरे वाचा तल्पद्रव्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च परितानां पवनेभ्यो विजनेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे जैसे मैंने कहा था मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँगा फिर प्रबोधानंद महाराज आगे बोलेंगे। श्री गार्ग उवाच अयम रोहिणी पुत्रो मयन सूर्यो गुणे क्या सते राम ऐसी बाधिक्याल बलम विदु याद नाम पृथक भावत संकृष्ण उषण देवी। जैसे आप जानते हो आज बहुत ही शुभ दिन है। क्या है? बलराम जयंती। वो बलराम जी कौन है? भगवान के बड़े भाई। जब पर भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनके सनातन साथी भी साथ में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान ने वासुदेव और देवकी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया, वासुदेव देवकी ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत गहरी तपस्या की थी। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए कुछ खाया नहीं, केवल जो पत्ते पेड़ों से गिरते हैं वो थी उनकी खुराक। अगर आपको ये खुराक दी जाए तो आप ज़्यादा देर नहीं टिकोगे। तो 12,000 देवताओं के वर्षों के और हमारे पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है। और निरंतर उनका चिंतन एक ही विषय पर था, हमें परम भगवान प्राप्त हों पुत्र के रूप में। तो बलराम जी भी भगवान के भाई हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं वो भी प्रकट होते हैं। कई बार प्रकट होते हैं बड़े भाई के रूप में, कई बार छोटे भाई, और कई और प्रकट होते हैं उनके साथ। तो वासुदेव देवकी उसे दोनों के पिता और पिता और माता भगवत विदर्शन में आप पढ़ते हो। वासुदेव देवकी का जब विवाह हुआ तो उनका देवकी का भाई कंस अपनी बहन को अपने घर छोड़ने जा रहा था। देवकी का पिता देवका बड़ा स्नेह था उसकी बेटी के प्रति। उन्होंने शादी में इतना बड़ा दहेज दिया, हजारों रथ सोने के बने हुए और सेवा करने के लिए गोपियाँ, सेवा करने के लिए और दासी और सोने के चैरियट इत्यादि। और कब उसने कहा मैं अपनी बहन को घर में छोड़ के आता हूँ। तो वैसे उसका भाव अच्छा था, भाव में था, शादी हुई है बहन की उसके घर छोड़ा है, कोई रिवाज भी है सर। तो रास्ते में एक दिव्य वाणी द्वारा उन्हें सूचना मिली क्या हे मूर्ख, तुम तुम्हारी बहन को ले जा रहे हो उसके घर और तुम जानते नहीं कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण, इसका 8वां बच्चा तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस दुष्पुत्र के थे, जब उन्होंने सुना कि उनकी जान को खतरा है उस देवकी के राज से जिसको बड़े प्राण प्रेम से छोड़ने जा रहे हैं, कंस की बुद्धि एकदम नष्ट हो गई। तलवार निकाली और देवकी को मारने को तुरंत तैयार हो गए। भगवत में कहा गया है जान बचाने के लिए अगर किसी को चापलूसी भी करना पड़े तो ठीक है। तो वासुदेव ने देखा कि देवकी की जान खतरे में थी, वासुदेव ने कहा, घबराते क्यों हो? जैसे बेटा बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को तुम्हारे पास ले आऊंगे, और अगर तुम्हें लगे इससे खतरा है तो उसको जो जो करना कर लेना, तुम्हारी मर्जी। तो कम से कम ठीक है, वो कर्म बहुत थे को पता था, कम उसकी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। तो वहाँ से फिर नारद मुनि वहाँ पहुँच गए। नारद मुनि ने कहा, कर्म ये यादव खानदान के सारे सदस्य जन्म ले लिया है। तो नारद मुनि चाहते थे कम से और अपराध करे और जिसके कारण भगवान जल्दी प्रकट हो। तो जब कम्स को ये सूचना मिली तो कम्स ने कहा, अब तक किसी को नहीं जिंदा छोड़ना। तो जैसे देवकी के पुत्र प्रकट होते थे तुरंत ही उनको उनका वध हो जाता था। ये जो छह बेटे मारे गए पहले, उन्हें मानी जी के बच्चे बुलाते हैं, तो उनके द्वारा ये संदेश मिलता है कि जब तक हम काम क्रोध लो मोह मन मत्सर्य को नहीं वश में करेंगे, अब भगवान को नहीं समझ सकोगे। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से किनारे भक्ति भारत धर्म से मैं अलग अलग समय में अवसारित होता हूँ, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए पाई सनाया साधु नाम विनिश्चित दुष्कृता धर्म पदार्थ आया समय। मैं अलग अलग समय में प्रकट होता हूँ, धर्म के नियमों का पालन करें। भगवान जो हैं बिल्कुल शुद्ध है, और उन्हें समझने के लिए हमें हमारे हृदय को भी शुद्ध बनाना पड़ेगा। ये जो हम वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, जिसके कारण हम मंगल आरती में आते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास सुनते हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? कि आपके अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाया जाए, जिसके द्वारा परम भगवान को समझ सको। तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य ये हैं शेष शत्रु आध्यात्मिक जीवन के। और आचार्य ने ये उपदेश दिया है कि अगर आप भगवान को समझना चाहते हो, ये जो छह असुर थे जिनका वध हुआ था, उसके द्वारा हमें ये संदेश मिल रहा है कि अगर भगवान को समझना चाहते हो, ये जो अनर्थ हैं उनसे हमें बचना पड़ेगा। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत काम करते हैं? हम जानते हैं इंद्रिय तृप्ति का कार्य हमें संतुष्ट नहीं करेगा, जब भी हम जुड़ते हैं। और भगवान ने क्या कहा, काम ऐसे क्रोध ऐसे आज गुरु बुद्धा, भगवान ने कहा काम वासना के कारण। और आगे भगवान ने कहा, आप इसे कहाँ प्राप्त कर सकते हो, मन में बुद्धि में इंद्रियों में? आगे कहा, कैसे आप इन्हें नष्ट कर सकते हो, ज्ञान की तलवार से। तो छह बच्चों का तो वध हो गया। जब सातवीं प्रेगनेंसी थी तो भगवान ने योग माया शक्ति के द्वारा वो जो बच्चा था वो चला गया था देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। बालराम जी जो हैं, क्योंकि हमेशा एक इच्छा रहती है भाई की सेवा, और बालराम जी प्रकट हुए किस लिए? भगवान की लीला को सफल बनाने के लिए। और भगवान बालराम जी तो ट्रांसफर हो गए थे रोहिणी के वूम में, तो फिर परम भगवान प्रकट हुए। दूसरे शब्द में बालराम ने जो मैल थे कांकुर लोग वो मनमत रहे उसको साफ कर दिया, फिर परम भगवान प्रकट हुए। तो बलराम जी जो हैं पहले गुरु भी हैं, उनके अनेक नाम हैं, जैसे आज के श्लोक में आपने पढ़ा, वह एक नाम है रोहिणी नंदन जो, क्योंकि वो रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिया था, क्योंकि उन्होंने रोहिणी माता को माता के रूप में स्वीकार किया था। और जो व्यक्ति भगवान राम और कृष्ण भगवान की शरण ले वो अपना जीवन शांति से निभा सकते। तो बलराम जी के अनेक नाम हैं, और भक्त जो हैं बलराम जी की उपासना करते हैं किस लिए, अपनी भौतिक कमजोरियों को नष्ट करने के लिए। हम बलराम जी के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, भौतिक शक्ति नहीं। आप पहलवान बनना चाहते हो तो बलराम जी के बताओ आ सकते हो, भगवान कहते हैं चार परिस्थितियों में लोग में बसाते हैं, पर हम बलराम जी के शरण में आते हैं उनसे शिक्षा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो बलराम जी हमेशा प्रकट होते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं, और बलराम जी जो हैं उनके द्वारा हम ये समझते हैं जो गुरु है वो उनके प्रतिनिधि हैं। बलराम जी के हाथ में क्या रहता है, हल और गदा। हल से क्या करते हैं, हल से जो खेती को साफ करना है साफ करते हो, फिर अन्न पैदा होता है। तो उसी प्रकार गुरु जो है बलराम जी का प्रतिनिधि, वो आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा जो हृदय की मैल है उसे दूर करता है, और अगर हम उसका लाभ उठाएं। और गुरु क्या करता है, अपनी परंपरा की शिक्षा के द्वारा हृदय को साफ करता है। तो बलराम जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे जब भगवान राम पृथ्वी पर आए थे। आप पढ़ते हो कि जब लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे बलराम जी, तो उनके मन में एक ही भाव था 24 घंटे। क्या था वो भाव, राम की सेवा, राम की सेवा। उनके पैदाइशी से उनके मन में एक ही भाव था, राम की सेवा। और जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ, सीता ने देखा उनके लिए कोई काम है ही नहीं, जो काम वो करने जाती है लक्ष्मण ने पहले ही कर दिया होता है। और लक्ष्मण जी जब वो देखते थे सीता कोई सेवा कर रही है तो उन्हें भी यार पसंद नहीं आता था, वो कहते ये सेवा तो मुझे करना चाहिए। तो दोनों गए भगवान राम जी के पास, क्या किया जाए, सीता कैसी है, उनकी शिकायत थी, जैसे मेरा विवाह हुआ है मुझे कोई सेवा है ही नहीं, मेरे जो सेवा मैं करने जाती हूँ लक्ष्मण पहले वहाँ पहुँच जाता है। लक्ष्मण ने कहा मैंने तो जन्म से ही निश्चय कर लिया था कि मैंने राम की सेवा करनी है। तो राम जी के सामने समस्या थी किसको किसका सहयोग दे। राम जी ने कहा चलो गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने क्या कहा, गुरु जी ने कहा कि उससे राम जी के घर का कार्य है वो सीता करे, और ये राम जी बाहर जाए युद्ध करने शासन करने फिर राम उनके साथ जाए। तो लक्ष्मण खुश नहीं था, पर ये उदाहरण है कि जब कोई समस्या आती है तो गुरु की शिक्षा लाभ उठाना चाहे। तो लक्ष्मण जी के रूप में उनका एक ही भाव था भगवान की सेवा। तो यही लक्ष्मण फिर प्रकट हुए बलराम जी के रूप में, और यहाँ थे वो बड़े भाई, बड़े भाई थे। और यही बलराम फिर प्रकट हुए थे किस रूप में, नित्यानंद के रूप में। तो भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। और बलराम जी का एक और नाम है दाऊ जी, बड़े भाई, उनका क्या भाव था, केवल भाई की सेवा, यही था उनके मन में। उनकी बचपन की लीला तो लगभग दो भाइयों ने एक साथ ही की थी। और अब देखते हो कि जो असुरों का वध किया भगवान के भाई ने, उसका असली संदेश क्या है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ में समझाया है कि जो असुरों का वध हुआ है, अगर हम ये कथा ध्यान से सुने तो हमारे हृदय से, हृदय में जो मैल है, अलग अलग प्रकार के भौतिक आकर्षण हैं, वो दूर हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण ने तो अनेक असुरों का वध किया, बलराम जी ने केवल दो तीन असुरों का वध किया। जैसे एक दिन धेनु का हाँ, वो उनके भाई चारावन जंगल में आए थे और भगवान ने कई असुरों का वध किया। फिर बलराम जब जंगल में पहुँचे तो उनके मित्रों ने कहा था, क्या एक गधा है, किसी को अंदर आने नहीं देता, इस बगीचे में इतने अच्छे फूल हैं पर हमें अंदर आने नहीं देता, आप कृपा करके उनका वध करो। तो बलराम ने कहा, इसमें क्या कठिनाई, ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। और बलराम भी गए जंगल में, पेड़ को हिलाया अपने तेजी के साथ, और फल जब नीचे गिरे, इन्हें को सूरज ने समझ लिया कोई अंदर आया है। और इन्हें को सूरज ने क्या किया, उनके पाँव को पकड़ कर घुमा कर फेंक दिया पेड़ों में। और जब इनके मित्रों ने देखा इनके मित्रों का वध हो गया है, तो फिर उन्होंने भी प्रयास किया भगवान को मारने के लिए, तो वह संभव थे। भगवान बचपन से ही अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जन्मा कर्म चा में दिव्य, मैं प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही दिव्य में। तो परम भगवान श्री कृष्ण ने अनेक दिव्य लीलाएं प्रस्तुत की और बलराम जी ने भी की। और एक और असुर था परम बसुर आया था, जहाँ भगवान और उनके भाई सब खेल रहे थे। वो जो खेल रहे थे, ये खेल से आप लोग अभी भी बच्चे अभी भी करते हैं, दो बन गए थे घोड़े और उनके ऊपर बैठे थे, जो हार गया उसको दूसरे को अपने पीठ पे उठाना पड़ता था। तो भगवान हार गए और परमसूरा उनके सामने की सेना में थे, तो परमसूरा ने बलराम जी को अपने पीठ में उठाया। उनका भाव ये था ऊपर जाके फेंक देंगे, तो ऊपर उठाते गए। तो बलराम ने क्या किया, बलराम ने अपने शरीर को एक्सपेंड विस्तार करके इतने भारी बन गए कि परमसूरा को छोड़ना पड़ा, उनका उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जब आप पढ़ते हो कि जैसे बाल लीला में जब एक दिन भगवान घर आए थे, तो माता ने कहा, तुमने क्या मिट्टी खाई है, हमारे घर में क्या किसी चीज़ की कमी है। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी जो सजी हुई थी गहनों के साथ। तो पर बलराम चाहते थे कि भाई माँ उनके भाई को डांटे। उन्होंने क्या सूचना दे दी कि आज आपके बेटे ने मिट्टी खाई। और जब भगवान घर लौटे, माँ ने कहा मुंह खोलो, और मुंह खोलो देखा पूरे विश्व का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड का। तो विश्वनाथ माता सोचने लगी ये मेरा सपना है या असलियत है। पर अगर आप ये कथा किसी अज्ञान नहीं व्यक्ति भौतिक वाले को समझाओ, वो क्या कहेगा, ये तो कल्पना है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो इसलिए भगवान की लीलाएं आप भगवत में पढ़ते हो तो कहाँ दसवें स्कंद में आकर, पहले नौ स्कंदों में नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति दसवें स्कंद में पहुंचेगा, उसके हृदय में किसी प्रकार का गलत विचार नहीं होगा। ये स्वीकार कर सकता है कि परम भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। इसी श्रीमद् भगवत में आप पढ़ते हो कि परीक्षित महाराज ने कहा मैं व्रत रख रहा हूँ पानी से और खाने से, पर जब से मैं सुखदेव गोस्वामी के द्वार के कमल मुख से ये भगवतम का संदेश सुन रहा हूँ तो मेरी भूख भी चले गई और प्यास भी चले गई। आप गोवर्धन लीला में देखते हो कि जब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत को उठा रहे थे, सब के सब भगवान के चेहरे को ध्यान से देख रहे थे, और उस समय के लिए ना उन्हें प्यास लगी ना भूख लगी। तो प्रभा जी दसवें स्कंद के लीला में कहते हैं अगर हम आध्यात्मिक विषय में रुचि लेंगे तो हमारा हृदय भी ऐसा बन जाएगा कि आप भौतिक भूख भौतिक प्यास से बचोगे। भौतिक भूख और भौतिक प्यास के कारण हम अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में जुड़ते हैं, और अगर आप इससे बचना चाहो क्या है उपाय, भक्ति योग। और जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुने और सुनाए उसका सुनने वाले का भी लाभ है, सुनाने वाले का भी लाभ है, जो दूसरे व्यक्ति सुन रहे हैं उनका भी लाभ है। कृष्ण कथा में लाभ ही लाभ है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, युद्ध होने से पहले बालराम ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास की कि युद्ध रुक जाए किसी प्रकार से, पर युद्ध ने धृतराष्ट्र ने किसी रूप में उनकी राय को स्वीकार नहीं किया। तो बालराम में छोड़कर बालराम क्या करेंगे, उन्होंने भारत के तीर्थ के स्थानों की यात्रा की, भारत के लगभग सारे तीर्थ के स्थानों की यात्रा की। यात्रा करते करते कहाँ पहुँच गए, रमेश्वरालय में उस समय संतों की सभा चल रही थी, हजारों संत उपस्थित थे, और उनका निर्णय यह था कि ये यज्ञ हजारों सालों के लिए चलेगा। और उन्होंने वहीं से सूतक खास बल दिए, आशीर्वाद दिया था उमाश्र सूतक को इस यज्ञ का निर्देशन करने के लिए। जब बालराम जी वहां पहुंचे, सारे संत महात्मा उठ गए, खड़े हो गए उन्हें आदर देने के लिए, पर एक संत नहीं उठा, वो थे रोमहर्षण सूता ने सोचा कि मैं क्यों उठूं, मैं आके व्यास साहब में हूँ। पर बालराम जी को ये व्यवहार ठीक नहीं देखा। तो बालराम जी ने क्या किया, एक घास से पूछेगा छुआ उनको और उनकी क्या हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनको A47 की जरूरत नहीं थी, एक घास को लगाया और मृत्यु। फिर मृत्यु हुई, सब भक्त का आह क्या हो गया, हमने खास वर दिया था रूपकर्षण सूत्र को कि वो हजारों साल के लिए जिएगा और मार्गदर्शन देगा, और अब हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा, सफल कैसे करेगा। तो भगवान ने कहा अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पर जीवित बना देना चाहिए तो मैं बना देता हूँ, मेरे क्या संभव है जो बोलो मैं कर सकता। मैं संत ने कहा नहीं, आपकी इच्छा थी कि इस व्यक्ति का वध हो क्योंकि उसने आपका आदर नहीं दिया, तो हम उसका विरोध भी नहीं करना चाहते, तो पर हम करें क्या भी, ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं इसकी आयु हजारों साल है, अब लीडर के बिना हम कैसे करें। तो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम है, भगवान का नो प्रॉब्लम। भगवान ने उनके बेटे को चुना और कहा बेटा बाप का प्रतिनिधि माना जाता है, तो भगवान ने वही जिम्मेदारी सौंप दी उनके बेटे को, और जो संत महात्मा थे बड़े प्रसन्न हुए। तो संतों ने वो बालराम जी ने कहा और अटोनमेंट मुझे कुछ करना चाहिए, और सजा देना चाहते हो दे दो, और क्या सजा मुझे भुगतनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो पड़ोस का जंगल है उस जंगल में एक सूर भाव का व्यक्ति है, जब हम यज्ञ करने जाते हैं ऊपर से आकर मल पेशाब करते थे, तो हम ना यज्ञ कर पाते हैं ना उस पेड़ों का फल। लगता है कि उस दिनों में अनेक पेड़ थे और बड़ा मीठा फल, पर हर वन में लगता है कोई असुर था। भगवान ने कहा वो भक्त ने कहा रात इस आपके अलावा कोई भी इस असुर का वध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा दिस इज नो प्रॉब्लम, एक असुर को ठीक करना है। भगवान गए जोर से पेड़ को हिलाया, तो पेड़ को जो हिलाया वो असुर समझ गया क्या ये है, कौन है वहाँ देख रहे कौन है कौन है कौन है, तो कौन है जो ये पेड़ को हिला रहा है, किसकी हिम्मत पड़ी है मेरे बगीचे में मेरे से पूछे बिगा अंदर आ गया। तो उन्होंने जब बालराम को देखा तो बालराम को पीछे से आकर लात मारी बहुत जोर से, बालराम ने पकड़ कर पैरों से घुमा कर क्या किया, इतनी जोर से फेंका जो पेड़ों में गिरे और मर गया। जब संतों ने देखा राजा ने कि बालराम ने अपनी शक्ति से उस असुर का वध कर दिया है, अब वो उस जंगल में जा पाएंगे और फल वहाँ का खा सकेंगे, वो बड़े प्रसन्न हुए। सब संतों ने क्या किया, बालराम को आशीर्वाद दिया। तो जब बालराम जी तीर्थ के स्थानों की यात्रा कर रहे थे उन्हें ये भी सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है और अनेक जो क्षत्रिय थे सबका सबकी मृत्यु हो गई है, इस युग में। तो बलराम ने सोचा चलो जाके मैं देखता हूँ कुरुक्षेत्र में युद्ध की स्थिति। बलराम ने कहा मैं चलता हूँ देखने के लिए क्या है स्थिति। तो बलराम जी उस युद्ध के मैदान में पहुंच गए। यहाँ की दुर्योधन और भीमसेन अपने गधे से युद्ध कर रहे थे। दुर्योधन ने इस कला को सीखा था किससे? बलराम से। पर फिजिक ताकत ज्यादा भीमसेन के पास थी। वो बलराम जी को पता था किसी का विजय नहीं होगा। बलराम जी पहुंचे वहाँ उस स्थान में जहाँ दुर्योधन और भीमसेन अपने गधे से क्लब से ये लड़ रहे थे। जब बलराम जी वहाँ पहुंचे युधिष्ठिर सादे नकुला घबरा गए। उन्हें लगा कि क्योंकि दुर्योधन बलराम के शिष्य थे उनसे इन्होंने कला की लड़ने की कला सीखी थी, शायद वो सोच रहे बलराम जी आए हैं उनका सहयोग करने के लिए। इसका दुर्योधन पर बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने दोनों का तुम्हें से किसी की विजय नहीं होगी, लड़ना बंद करो। एक ज़्यादा तेज है कला में और दूसरा तेज है ताकत में, किसी की विजय नहीं होगी। और बलराम ने देखा इतना जोश था इन दोनों में, उन्होंने बलराम की राय को स्वीकार नहीं किया। फिर बलराम जी छोड़ कर चले आगे। तो बलराम जी हम भगवान के बड़े भाई के रूप में, तो बलराम जी के एक ही भाव रहता है और वो क्या है? वो भाव ही रहता है भगवान की सेवा। और अगर हम कृष्ण बलराम की शरण लें तो हमारे भक्ति के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं उनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए उन्होंने दसवें स्कंद का अनुवाद किया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जैसे कहा उन्हें पता नहीं था कब तक उनकी आयु रहेगी। तो प्रभुपाद जी ने दसवें स्कंद को सार रूप में प्रस्तुत किया है एक कृष्ण मुख के नाम पर। और प्रभुपाद चाहते थे कि ये ग्रंथ प्रकाशित हो जाए। उस समय प्रभुपाद नए आए थे अमेरिका और संस्था के पास धन नहीं था उस ग्रंथ को छापने के लिए। तो उन दिनों में हमारे प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को इंग्लैंड भेजा था प्रचार शुरू करने के लिए। जब वो प्रचार शुरू कर रहे थे तो उनका परिचय हुआ बीटल्स के साथ। आपने सुना है बीटल्स का नाम, खास करके एक बीटल जॉर्ज हैरिसन अच्छा भक्त बना था बना। तो प्रभुपाद जी को पता था ये कि श्याम सुंदर का कि नई दोस्ती है जॉर्ज हैरिसन बीटल के साथ। तो न्यूयॉर्क में श्याम सुंदर आए थे प्रभुपाद को मिलने। तो उन्होंने प्रभुपाद ने कहा श्याम सुंदर व्हाई डिडंट यू गो एंड आस्क जॉर्ज टू पे फॉर प्रिंटिंग दिस बुक। तुम जॉर्ज को पूछो वो छाप दे ये किताब, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये किताब बड़ी खूबसूरत रूप से छपे। श्याम सुंदर ने कहा प्रभुपाद जॉर्ज तो नया भक्त है, उससे मैं ऐसे मांगूंगा वो शायद भाग जाए, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, पहले उसको भक्त बनने दो फिर हम मांगेंगे। पापा ने कहा नाउ जस्ट गो एंड आस्क। जब श्याम सुंदर ने देखा कि प्रभुपाद इतने डिटर्मिंड है उसे पूछने के लिए कि वो किताब छापने को तैयार है, तो जब श्याम सुंदर वापस इंग्लैंड आया तो उसने जॉर्ज को कहा माय गुरु टोल्ड मी टू आस्क यू कैन यू प्लीज प्रिंट दिस कृष्णा बुक It presents summary of the 10th canto. George ne kuch puche bigar ka kitna kharcha aayega aur ekdam check banaya aur kitab chapi. Is liye abhi Krishna book jo 10th sadi ki saar hai usme George Harrison ka ek page mein unka dastakhat hai. To yehi Balaram ji prakat hue Mahaprabhu ke samay किस रूप में मुझे नाना के रूप तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं और नित्यानंदा गुरु जी के रूप में प्रकट हुए थे उनका भाव क्या था हमेशा महाप्रभु की सेवा तो आज और बालराम को क्या बुलाते हैं लाऊ जी एक कहानी मैंने सुनी है पता नहीं कितनी बोन पॉइंट है एक समय बालराम ने जो मोर है वो केवल भगवान कृष्ण अपने पगड़ी में लगाते हैं ना तो बालराम ने कहा मुझे एक दिन के लिए कृष्णा बनने दो अपना पीकॉक जो है उसको मेरे सिर में लगाने दो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम ये लो और बालराम एक दिन के लिए कृष्णा जैसे दिखने लगे तो कंस तो एक के बाद एक असुर को भेज रहा था भाइयों का वध करने के लिए तो असुर चलने लगा था मथुरा के लिए उसने पूछा कंस से मैं पहचानूंगा कैसे कौन है कृष्णा और मुझे भेज रहे उनके मारने के लिए और कंस ने कहा एक ही व्यक्ति होगा जिसने वो पीकॉक को पैदा होगा तो पहचानना बहुत ईजी है किसी जब असुर आया वृंदावन में उसे देखा कि बालराम ने वो मुकुट लगाया हुआ है उन्हें समझा ये कृष्णा है तो बड़े जोर से पाँव से मारा इसके कारण बालराम जी ऊपर हवा में गए और फिर वापस आए बालराम ने कहा ये बड़ा खराब अनुभव था और अपने आप मोर निकाल कर दे दिया वापस भगवान तो बालराम जी के अनेक लीलाएँ हैं और हमें इनमें रुचि लेनी चाहिए और रुचि लोगे बहुत एक प्यास और भूख से बच सक हैं अभी महाराज आगे बढ़ेंगे हरे कृष्ण बालराम जी की दाऊ जी की और गौर प्रभु